आज इस जॉयफुल लाइफ की जानकारी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो वो किस तरह से प्राप्त होंगी उसके लिए इसी धरती के माँ मानव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आज जीवन कहानी हमारे भाई साहब से सुनेंगे। आदरणीय ब्रिज मोहन भाई, आदरणीय भाई साहब, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ ब्रह्मा कुमारी से, ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, अ मेंबर ऑफ ब्रह्मा कुमारी एपेक्स कमेटी, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ ब्रह्मा कुमारी, एडिटर ऑफ प्योरिटी मंथली पब्लिश्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली। He has completed graduation in commerce 1953 and law in 1955 in Delhi. A qualified chartered accountant since 1956. He came across Brahma Kumaris in the year 1955. Resigned the job of finance manager from Fertilizer Corporation of India and joined and surrendered Brahma Kumaris in the year 1973. He has participated in several international conferences, also represented Brahma Kumaris at United States New York conferences, visited very many countries, USA, Canada, New Zealand, Australia, etc. He started correspondence course of godly knowledge in Raj Yoga meditation in 8 different languages, and wrote different spiritual books on different subjects. His interest and hobbies are service of spreading value education and Rajyog meditation on the whole mankind. Aur aap sab peace of mind channel hamari dekhte honge, unme question answer sessions hote hain, wo bhi hamare bhai sahab hi usme deal karte hain. Ab main nivedan karti hu ki आप आपका ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा की कहानी पर आपके विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय ब्रिज मोहन भाई, एक्सक्यूज मी, बहनों को मैं फूल और बैजिस से स्वागत करने के लिए बुलाती हूँ। निवेदन करती हूँ कि वो आ जाए।
बहन जी को दोगे ना? ओम शांति। बोला ये कुछ है? ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। सबने नाश्ता वास्ता करके आराम से आए हैं, प्रेम से बैठेंगे थोड़ी देर। आप देख रहे हैं जो भी बहन भाई पहली बार यहाँ पधारे हैं उनको कुछ कुछ विचित्र चीजें यहाँ पर दिखाई देगी होंगी। पहली बात कि ब्रह्मा कुमारी, आप ब्रह्मा कुमारी, आपने बहुत सारी ब्रह्मा कुमारियां देखी। मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया में 50,000 तो होगी। तो ये ब्रह्मा कुमारियां कौन हैं? इससे पहले तो किसी ने नहीं ऐसा देखा कि इतनी सारी सफेद वस्त्रधारी बहने सारी दुनिया में विचर रही हैं। तो जब हम ब्रह्मा कुमारी कहते हैं तो ये प्रश्न उठता है, ब्रह्मा कौन जिसकी इतनी सारी कुमारियां हैं? तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की बहुत सारी यूनिक बातें हैं। एक तो ये कि ये पहली संस्था है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड है। सारी दुनिया चकित है, सारा धार्मिक जगत हैरान है। दूसरी बात कि इतने सारे विश्वविद्यालय में आपको बताया गया होगा कि 137 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्पेनिंग ऑल कॉन्टिनेंट्स के एक भी इस संस्था में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सैलरी लेता हो, पैसे लेके काम करता हो। ये भी एक विचित्र बात है। मिलिट्री के अंदर भी जो गुरुद्वारा चर्च मंदिर होता है उसका प्रीस्ट भी पैसे लेता है। तो फिर यंग एज में लगभग हमारे 80% जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो यंग हैं। हम भी यंग थे, आज ओल्ड हो गए हैं, 21 साल की उम्र में आए थे। तो यंग एज में कोई व्यक्ति इतना परमात्मा में विश्वास रखता हो, इतना विश्वास रखता हो कि उसके हवाले कर देंगे तो बेड़ा पार है, वही इतनी हिम्मत कर सकता? घर वाले भी रोकते हैं, भाई क्या होगा तुम्हारा, कुछ सोचो। अच्छा, फिर आप डेडिकेशन देखेंगे कि कमाल की डेडिकेशन है, और कोई सूझता ही नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग भगवान को याद करते हैं, अपने घर में बैठ के आराम से याद करते हैं। ये तो पकड़ पकड़ के आओ आओ, जैसे वो पानी पिलाते हैं ना निर्जला काशी के दिन जबरदस्ती, या होली के दिन रंग लगाते हैं कि भी कोई बच ना जाए। क्या मामला है, इनको क्या पड़ी है? फिर परिवार की तरह रहते हैं। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, आपने देखा होगा, आप किचन में चले जाओ, पहरेदार पे चले जाओ, ड्राइवर पे चले जाओ, अलग अलग ड्यूटी करते हैं, लेकिन परिवार का स्नेह इतना है जो घर वालों से भी ज्यादा। तो ये क्या मामला है? जबकि आज की दुनिया में दूसरी बात है। तो हम आज तो आपको दो चार गहरी बातें सुना रहे हैं जो आपसे संबंधित है। तीन पिता होते हैं। एक होता है शरीर का पिता, और एक होता है सबका पिता परमात्मा, सबका मालिक है। शरीर का पिता अलग अलग हर जन्म में, और परम पिता सबका सदा के लिए एक। एक बीच का पिता होता है जिसको धर्म पिता कहते हैं। पिता, धर्म पिता, परम पिता। अब जैसे हम कहेंगे क्रिश्चियंस का धर्म पिता जीसस क्राइस्ट है, बुद्धिस्ट का धर्म पिता महात्मा बुद्ध है। कभी भारतवासियों ने सोचा हमारा धर्म पिता कौन है? सोचा कभी? धर्म पिता तो एक ही होगा ना, जिसने धर्म चलाया होगा। इसी प्रकार से आप गौर करेंगे तो वो हमारे भारत का धर्म कौन सा है और किसने चलाया ये भी पता नहीं। जितने दुनिया के मोटे मोटे धर्म है सबको पता है हमारा धर्म पिता कौन है, कितने साल पहले उन्होंने धर्म चलाया और उसका जो बुक है वो कौन सा है। परंतु भारतवासी हिंदुओं से पूछो आपका धर्म किसने चलाया, आदि सनातन है, आदि सनातन तो है, आदि मैंने शुरू का, सनातन मैंने पुराण, चलाया किसने, धर्म का शास्त्र कौन सा है, हमारे अनेक वेद ग्रंथ उपनिषद पुराण है, अरे वो कौन सा है जिस जो धर्म चलाया पता नहीं, तो धर्म का फाउंडर पता नहीं। तो पहली बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परमपिता को सब मानते हैं, अपने शरीर के पिता को भी सब जानते हैं, लेकिन जो दूसरा नंबर है परमपिता से नेक्स्ट, जिसके द्वारा दुनिया रची गई, उसको इनडायरेक्टली जानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि हमारे शुरू में जब मनुष्य शुरू हुआ उसका फाउंडर कौन है, तो क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम है, मोहम्मदन लोग कहते हैं बाबा आदम है, और भारतवासी कहते हैं ब्रह्मा है, इसको भी सब मानते हैं। अब ये कहा जाता है गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, साथ साथ कहते हैं ब्रह्मा क्रिएटेड द वर्ल्ड, और गॉड और ब्रह्मा एक तो है नहीं, तो फिर क्या मामला है कि ब्रह्मा कहां से आ गया और वो कौन है। तो अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब सृष्टि चक्र बदलता है, चक्र तो चलता रहता है, एटर्नल है, लेकिन जब नीचे से ऊपर आना होता है, पुराने से नया बनना होता है, तो उसको कहा जाता है परमात्मा ने दुनिया की पुनर् दोबारा रचा। परमात्मा इस दुनिया में इंटरफियर नहीं करते, वो कहते हैं तुम चलो तुम्हारे कर्म तुम्हारा फल, लेकिन जब बिल्कुल ही वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो वो कहते हैं मैं फिर इंटरफियर करता हूं, इंटरवीन करता हूं, और किसी माध्यम से करता हूं। परमात्मा निराकार है जैसे हम निराकार हैं, अब बॉडी ली हुई है तो काम कर रहे हैं, बॉडी छोड़ देंगे फिर निराकार हैं, तो बॉडी के द्वारा ही हम फंक्शन करते हैं। तो भगवत गीता के शुरू में लिखा हुआ है तुमेव माता च पिता तुमेव, सिख भाई भी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब भगवान माता पिता कैसे बने, इनकॉर्पोरियल फॉर्म में तो सुप्रीम स्पिरिचुअल फादर है, तो माता पिता तो शरीर में चाहिए, इसलिए परमात्मा फिर एक तन में अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं ले सकते। गीता में लिखा हुआ है कि मैं अवतरित होता हूं, और उस ब्रह्मा के अवतरण का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यादगार भारत के अंदर है। आपने शिव के मंदिर देखे होंगे, शिवलिंग के, और सारे लोग मानते हैं कि शिव ही परमात्मा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हर एक को देवता कहा गया, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो जो शिव के मंदिर होते हैं उनके बाहर एक बैल होता है और उसको नंदी कहते हैं। नंदी मैंने जो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, खुश करता है। और बैल क्यों उसके सामने रखा गया है कि शिव ने बैल पर सवारी की। अब कोई इस चार पैर वाले बैल पर तो नहीं की होगी, लेकिन एक यादगार है कि परमात्मा ने एक मानव के तन में प्रवेश किया और उसका नाम है ब्रह्मा। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण पैदा हुए, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है, ये ब्राह्मण है। अब आप कहेंगे ब्राह्मण का क्या मतलब हुआ, एक तो कास्ट ब्राह्मण होते हैं, आजकल भी हैं, शर्मा वर्मा बैनर्जी मुखर्जी चैटर्जी, लेकिन ये ब्राह्मण कर्म के ब्राह्मण होते हैं। तो जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां आप देखेंगे वो कोई कास्ट ब्राह्मण नहीं है, कोई हो भी सकता है, लेकिन अपने कर्म के ब्राह्मण है। ब्राह्मण मैंने जिसने ब्रह्मा जी के द्वारा शिव की मत को फॉलो किया, ब्रह्मा ने करवाया, खुद भी किया। अब ब्राह्मणों की निशानी होती चोटी। अब ये जो चोटी है, चोटी मैंने टॉप, कि सारे जितने भी दुनिया के अंदर मनुष्य हुए हैं उनमें सबसे पहले टॉप की स्टेज किसने अटेन की, वो ब्राह्मणों ने की। अब आप देखेंगे चोटी, पुरुष तो छोटी सी रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चोटी किसकी होती है, माताओं बहनों की। इतनी लंबी होती है कि ऊपर खड़ी करना तो मुश्किल है, वो नीचे को जाती है, लेकिन है तो टॉप, उसका नाम ही चोटी है। तो परमात्मा ने अपना कार्य करने के लिए ब्रह्मा को तो बनाया, लेकिन उसके जो बाकी जिनके द्वारा काम कराया वो थी माताएं बहनें। शास्त्रों में लिख दिया कृष्ण जी के साथ गोपियां थी, और गोपी वल्लभ कहते हैं। वल्लभ का मतलब होता है पिता, आपको पता हो वल्लभ का मतलब पिता होता है। तो गोपियों का पिता कृष्ण जी तो नहीं हो सकता, वो तो कोई बुजुर्ग ही होगा। दूसरी बात, जितने हमारे देवता हैं उनमें एक ही देवता जो बुजुर्ग है, आप देख लीजिए सारे देवी देवता यंग होंगे, सिर्फ ब्रह्मा को बुजुर्ग दिखाया गया और उसको देवता नहीं कहते, आदि देव, यानी देवताओं से पहले हुआ जिसके बाद देवता बने। आदि देव का क्या मतलब, कि देवताओं के सतयुग से पहले हुआ, कलयुग के अंत में हुआ। अब इसके इतने यादगार सारे भारत में हैं, आप देखो जितनी नदियां हैं भारत की सबके नाम माताओं पर हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, जितनी गिन लो, एक है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ये भी वंडरफुल यादगार है कि सारी नदियां माताओं के नाम पर, और एक ब्रह्मपुत्रा यानी परमात्मा पुत्र ब्रह्मा। और आप जानते हैं कलकत्ते के पास सबसे बड़ा मेला गंगा सागर का लगता है, ये यादगार है। तो कहने का मतलब हुआ परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा पुत्रियों के द्वारा, थोड़े से ब्रह्मा पुत्र भी हैं उसमें, ये सारा ज्ञान देने का काम करवाया जो हो रहा है। गलती से हमारे शास्त्र वालों ने महिलाएं उड़ा दी, और महिलाओं को उड़ा के पुरुष रख दिए। सारी यादगार तो महिलाओं की, राखी कौन बांधता है, पवित्रता की महिलाएं बांधती हैं। इसलिए भगवान कहता है कि अब मैं आके दोबारा से वो काम करवा रहा हूं, तो काम बड़ा आसान है। वो कहते हैं देखो तुम भारतवासी देवी देवता थे, आज तुम्हारे नाम देवी देवताओं पर हैं, किसी का नाम लक्ष्मी होगा, किसी का राम होगा, किसी का कृष्ण होगा, पार्वती होगा, लेकिन नाम ही रह गए हैं, असली तो देवता नहीं रहे, घर में मूर्ति लगा लेते हैं। आप देखो कोई आज भाई अपना नाम सीता राम रखे हुए हैं, अब सीता तो देवी थी, राम देवता था, तो सीता राम कैसे हो गए भाई अकेले ही, कई राधे श्याम रखे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण भी मिल जाएंगे, तो नाम ही रह गए ना। इसलिए बाबा कहता है कि फिर मुझे आके ज्ञान देना पड़ता। सिंपल बात बताते हैं कि देवताओं और हमारे में फर्क क्या है, वो सच्चे थे, ईमानदार थे, स्वच्छ थे, दिल भी साफ, वो भी साफ, तो देवता थे। बीच में छल कपट आ गया, अभिमान आ गया, क्रोध आ गया, गिर गए, फिर कैसे बने देवता, इसको छोड़ दो। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने हमको क्या सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने सिखाया सुख दो सुख लो, बड़ी आसान बात है। हम दुख देते दुख लेते हैं, कोई फायदा थोड़ी है, एक दूसरे को कांटा चुभोए, कांटों की दुनिया हो गई। सुख दो सुख लो, फूलों की दुनिया हो जाएगी, वो बहन जी भी बता रही थी, मीठा बोलो। अब हम बोल तो सकते हैं, अभी कड़वा बोलना जरूरी है क्या? अच्छा, फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या सिखाया, जो तुम्हारी निंदा करे वो तुम्हारा मित्र है। अब दुनिया के लोग जो निंदा कर दे उसके तो बोलना ही बंद कर देते हैं, निंदा करने वाला कौन होगा जो आपको आपकी गलती बताएगा, तो अपनी गलती सुधार लें। अपना दोस्त तो आपको गलती बताएगी नहीं, वो तो आपकी गलती को पता ही नहीं लगेगा उसको, तो मित्र हुआ। फिर ब्रह्मा बाबा ने सिखाया अपकारी पर उपकार करो, अर्थात जो हमारे फ्रेंड हैं, जो अपनी नेचर के हैं, उसके साथ ठीक तरह रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे कुछ ठीक ठाक बोलता है हमारे बारे में, उसके गलत हमें कोशिश करता है साबित करने की, उस पर भी न्याय करो, उस पर भी क्षमा करो, दया करो, ये बातें हैं, तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है नारी का सम्मान। देवताओं की दुनिया में क्या होता है? नारी का सम्मान। क्या प्रूफ है? पहले राधे फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल हो गया मिस्टर एंड मिसेस, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए नारी का सम्मान अर्थात नारी के ऑनर का, उसकी इज्जत का, उसकी चेस्टिटी का, तो देवता है। और आज क्या हो गया? आज उल्टा है। नारी की, भारत की नारी जिसकी पूजा करते हैं, जिसके लिए नवरात्रे मनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, तो बड़ी खतरनाक बात है ना। इसलिए भगवान कहता है कि मुझे आना पड़ता है। अब ब्रह्मा कुमारियां भी नारियां हैं, सारी दुनिया के अंदर ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं, लेकिन लोग सुधरने आते हैं। खराब दृष्टि वाला भी आएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा, जैसा व्यक्ति देखेगा वैसे वाइब्रेशन पैदा होंगे। अब मंदिर में जाके लक्ष्मी जी को देखो या राधा को देखो, तो आपके अंदर कोई खराब दृष्टि पैदा होगी? नहीं होगी। अब वही किसी सिनेमा के एक्टर का बोर्ड देखो तो दृष्टि खराब पैदा हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है ना। इसलिए भगवान कहता है आप ऐसे बनो। हमको क्या सिखाया? ये नहीं कि अपने आप को ठीक करो। ब्रह्मा बाबा ने सिखाया अपने को ठीक तभी कर सकते हो अगर दूसरों को भी ये मैसेज दो तुम भी ठीक हो जाओ। तो सार इसका ये है कि ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। एक सिंगल व्यक्ति, आप सोचो, एक सिंगल व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता कि 1936 में शिव बाबा ने उनको ऑर्डर किया कि भाई तुमको ये काम करना है। वो ज्वेलर थे, आपको सारी हिस्ट्री मोहन भाई अभी दिखाएंगे स्लाइड्स के द्वारा। उस सिंगल व्यक्ति ने बात मान ली और अपने आप को संपूर्ण जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। हम गॉड तो नहीं बन सकते, लेकिन गॉड के कहना तो मान सकते हैं ना। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग उसने कहा आपको देवता बनाने हैं और देवता बनना है। ठीक है जी, पहला काम क्या किया कि मैं को छोड़ो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो थी कहा कि मेरी ना रहे। माताओं की एक संगठन बनाया, आठ माताओं का ट्रस्ट बना दिया कि जी ये आपके सुपुर्द है, मैं काम करूंगा लेकिन आपके सुपुर्द है, ट्रस्टी बन के करूंगा, तो मेरा नहीं रहा। आज सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या है? ट्रस्टी बना है। ये जिस हॉल में हम बैठे हैं ये मेरा है क्या? नहीं, परमात्मा का है, इसलिए हमारा है। हम कहते हैं आप अपने घर में आए हो, भगवान के घर में आए हो, ऐसे नहीं कहते हैं। सचमुच कहते हैं कि परमात्मा ने इस तरह के जितने भी स्थान बनाए हैं सब उसके बच्चों के लिए हैं, सारे ही उसके बच्चे हैं। वास्तव में आप सब भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जैसे हम भगवान के सब बच्चे हैं, कोई रियलाइज कर ले, आप देखेंगे तो ब्रह्मा की तो सारी संतान है, ब्रह्मा ने ही प्रजा रची। एक तो ये बात है। अब प्रैक्टिकली क्या करता है ब्रह्मा बाबा? हमने ब्रह्मा बाबा को 1955 में जब मैं लॉ पढ़ता था, हम ब्रह्मा बाबा के पास आए, मेरे माता पिता आए, हम आए, तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा बच्चे क्या करते हो? वो तो सबको ही बच्चे कहते थे। मैंने बड़ी फखर से कहा जी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जब मैंने पास कर लिया तो दिल्ली में रहता था, मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। फिर आया तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे इम्तिहान पास कर लिया? हाँ जी कर लिया। और सचमुच मैं आपको बताऊं कि मैं इम्तिहान के दिनों में किताबें नहीं देखता था, मेडिटेशन करता था। हमारे घर में ही सेंटर था, प्रकाशमणि दादी हमारी टीचर थी, दृष्टि लेके जाता था। बुद्धि क्लियर रहती थी, इम्तिहान पास हो गया। मैंने कह रही मैंने प्रैक्टिस कर ली, बोले ठीक है। मैंने कहा बाबा एक गड़बड़ है। बोले क्या? मैंने कहा लोग मुझे आके कहते हैं झूठे अकाउंट साइन कर दो, अब मैं क्या करूं? तो बाबा कहते हैं कि तुम मत करो। मैंने कहा वो बड़े प्यार से चलाकी से मुझे कहते हैं कि देखो ये साइन कर दो, तुम नहीं करोगे तो किसी और से करा लेंगे, पर तुम अच्छे काम में लगे हुए हो तो तुम करोगे तो ये पैसा तो अच्छे काम में लग जाएगा। मुझे वो इस तरह से चलाकी करके साइन करवाते थे कि भाई हम तो करा ही लेंगे, तुम नहीं करोगे कोई और कर देगा, पर तुम करोगे, तुम तो अच्छे रास्ते में लगे हो ना, तो जो तुम्हें पैसा मिलेगा अच्छे रास्ते में लगेगा, कर दो। मैंने कहा ऐसे कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा देखो ये वकालत में झूठ बोलना ही पड़ता है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो, सरकारी नौकरी कर लो। ब्रह्मा बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी पावरफुल थी, तांबे जैसा उनका शरीर चमकता था, बुजुर्ग थे, तपस्वी थे, तो मैंने उसी वक्त फैसला किया माउंट आबू में कि मैं दिल्ली जाके अपने ऑफिस में नहीं जाऊंगा और मैं नौकरी कर लूंगा। पहली बार मैंने अखबार देखा नौकरी के लिए, मुझे पता ही नहीं क्या होती है नौकरी, जो दिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसमें हाथ से अर्जी लिख के भेज दी। मुझे ये भी नहीं पता था टाइप कराना अच्छा होता, अब ऊपर वाले की मदद थी, मुझे इंटरव्यू भी आ गया, नौकरी भी लग गई। अब मैंने जैसे भारत में करते हैं अपनी पहली तनख्वाह का चेक बना के माउंट आबू भेज दिया रजिस्ट्री करा के, तो ब्रह्मा बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। अब मैंने सोचा कि भी ऐसी भी 21 साल की मेरी एज थी, ऐसी भी कोई संस्था होती है दुनिया में जो पैसा ही वापस कर दे, तो ब्रह्मा बाबा ने वापस कर दिया। तो मैं मुरली रोज सुनता था जो बाबा की लेक्चर है, उसमें आता था कि भगवान बहुत बड़ा सौदागर है, उसी का स्वीकार करता है जिसका उसको करना हो, बहुत गुणा देना पड़ता है। तो मैंने एक सारी 10-12 पॉइंट्स लिख के ब्रह्मा बाबा की बताई हुई भेज दिया, आपने तो कहा था नौकरी करो, ये तो ईमानदारी की कमाई है, सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी है, तो आपने क्यों नहीं स्वीकार किया, कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताइए। तो उन्होंने फिर लिखा ठीक है इस बार ही रख लेते हैं, पर आगे से नहीं भेजना, अपने आप ईश्वरी सेवा में लगाओ। तब मैंने सीखा कि हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे का हिस्सा बनाते हैं, इतना मेरे खर्चे के लिए, इतना मेरे बुढ़ापे के लिए, इतना रिश्तेदारों के लिए, इतना भगवान के लिए। अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन वो कहता है करो ये सब पर सारा मेरा समझ के करो, कि है तेरा और तेरा समझ के मैं कर रहा हूं। पहले तो मुझे फर्क नहीं पता लगा, फिर पता लगा, मैं ऑफिसर था, मैं जाऊं कोई सामान खरीदने तो अगर मेरे में ये नशा है कि मैं फाइनेंस मैनेजर हूं, उस हिसाब से सामान खरीदूंगा, ड्रेस खरीदूंगा। अगर मुझे है कि भगवान का पैसा है, मैं ब्रह्मा कुमार ऑफिसर हूं, मैं थोड़ा सोच के खरीदूंगा जिससे काम चल जाए, तब मेरे को फर्क पता लगा कि सरेंडर क्या होता है। ब्रह्मा बाबा ने इस तरह सरेंडर कराया। तो इसी प्रकार से सारे आप सोचिए कि बने बनाए देवता तो नहीं, पर देवता बनने के लिए तैयार व्यक्ति, तो एक तो होता है कि ऊपर से आत्मा उतरी महात्मा बन गई, एक है कि सारे जन्मों के हिसाब किताब हमारे ऊपर, जैसे धोबी कपड़े धोए तो मैल ही दिखेगा, डॉक्टर की आप डस्टबिन देखोगे तो खून ही दिखेगा। तो लोग तो ये सोचते थे कि अभी पता नहीं ये क्या हो रहा है, पर हमको समझ में आ गया कि ये गहरी बात है। तो हमने 17 साल नौकरी की बाबा के कहने से, कभी ये नहीं लागत हुई कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, हल्के ढंग से की, और परमात्मा जल्दी से हर काम करा लेता था। फिर ब्रह्मा बाबा सिखाता कैसे था, ब्रह्मा बाबा के सिखाने के तरीके बड़े वंडरफुल थे, जो हम काम करते थे उसी में शिक्षा दे देता था। एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो हम रोए तो नहीं, क्योंकि हमें पता है आत्मा अगले जन्म में चली गई। तो हम गए तो और भी रिश्तेदार आए थे, वो कहें ये रोता ही नहीं, इसके चेहरे पे उदासी नहीं। तो कईयों ने कहा इसका बाप इसको बहुत पैसा छोड़ के इसलिए नहीं रो रहा। आज के लोग आपको पता है कैसे ताना मारते हैं। हम सोचे भाई हमारा साथ तो नहीं रहे, पर आत्मा ने चोला बदल लिया, ठीक है उसका पार्ट था, हर एक को बदलना। अच्छा, पिताजी के साइज मेरे जैसा था, वो भी अपने ऑफिसर थे। तो दुनिया वाले क्या करते हैं कि बाप के ड्रेस जो होते हैं ना पंडित को दे देते हैं, चल भाई दान कर दिया। मैंने सोचा मैं तो खुद ही ब्रह्मा कुमार हूँ, मेरे को फिट हैं, तो मैंने उनके 30 ड्रेस थे 30 रख लिए। मैंने कहा चलो काम आ जाएंगे। अच्छा, अब माउंट आबू जब हम आते थे तो ऑफिशियल ड्रेस तो पहन के नहीं आते थे, कुर्ता पजामा पहनते हैं। जिस दिन जाना होता था तो उस दिन हम अपनी ऑफिशियल ड्रेस पहन लेते थे। तो एक बार जब मुझे जाना था तो मैंने पिताजी का बुशर्ट पैंट पहना हुआ था, ब्रह्मा बाबा के पास गया। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, उन दिनों इंडिया में रेडीमेड का रिवाज नहीं होता था। लोग जैसे भारतवासी बड़े रॉयल लोग हैं ना, दर्जी को कहेंगे छोटा कर बड़ा कर ऐसे कर, हम तो उस तरह के लोग हैं, रेडीमेड वाले तो थे ही नहीं। फिर भी दो चार परिवार हांगकांग वगैरह में रहते थे, वो रेडीमेड ड्रेस कभी बाबा के पास छोड़ जाते थे। तो बाबा रख लेता था, जो नौकरी करने वाले होते थे ये बच्चे जाति बारी दे देता था। तो हमको रेडीमेड ड्रेस बाबा दे देता था, हम ले लेते थे। तो हमारे ऑफ कंपनी में हम बेस्ट ड्रेस्ड गिने जाते थे, क्योंकि कोई हांगकांग की ड्रेस है, कोई जापान की है, वो अफसर पूछते थे कहाँ से लाई है भाई। उस बारी ब्रह्मा बाबा ने कहा ये बच्चा एक बुशर्ट है तुम्हारे लिए रखी। अब जैसे कोई बच्चा होता है, तो मैंने बड़े फखर से मैंने कहा बाबा आप देखो ये मेरे फादर की ड्रेस है, मुझे कितनी फिट है। मैंने ऐसे 30 ड्रेस रख ली हैं इकोनॉमी बताने के लिए कि मैं बड़े बचत करता हूँ। बाबा मुस्कुराया, बोला देखो बच्चे अगर अपने पिता का पहनोगे तो जब पहनोगे पिता याद आएगा, और बाबा का पहनोगे तो भगवान याद आएगा। अच्छा, मैंने वो ड्रेस ले लिया और अगली बारी मैं 30 के 30 पैक करके माउंट आबू छोड़ आया कि भाई मैंने अपने से दे दिए, मैंने नहीं रखने, ये छोड़ दिए। अब माउंट आबू में कौन बुशर्ट पैंट पहनता है, तो उन्होंने बांट दिए। उससे अगली बारी आया तो एक भाई धोबी घाट पे कपड़े धो रहा था और उसने मेरे पिताजी का बुशर्ट पहना हुआ था। तो मैंने कहा ओ मेरे पिताजी का बुशर्ट। तब मैंने सोचा कि आपने चीज छोड़ भी दी, फिर भी आपके दिमाग में है ये पिताजी का, अगर मैं रोज पहनता तो सुबह शाम पिताजी की शर्ट पिताजी की, तो वो ही पिता याद आता, भगवान तो कहता मुझे याद करो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा हमको मोल्ड करते थे और बड़े प्यार से, हमें बाद में पता भी लगता था कि बड़ी फर्स्ट क्लास बाबा बात बता रहा है। ऐसे करते कि खुद भी वो ऐसे ही करते थे कि पहले उन्होंने अपना सरेंडर किया, फिर कहा कि मैं शरीर, यानी हमने देखा ब्रह्मा बाबा रात को हो दिन को हो वो योगी लगाते रहते थे, सारा दिन सेवा ही करते रहते थे। रात को चौकीदार बताता था कि हम पहरा दे रहे हैं, बाबा आके मेरे पास बैठ जाता था, सोता नहीं था। दिन में भी हम देखते थे कभी भी चले जाओ। तो बाबा करते करते ये कहने लग गया कि आखिर मैं शरीर में हूँ, मुझे नहाना पड़ता है धोना पड़ता है, कुछ टाइम तो मेरा अपने ऊपर लगता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मेरा टाइम मेरे पर लगे ही ना। ऐसे करते करते बाबा ऐसी स्टेज में आ गया, आज जिसको हम कहते हैं अव्यक्त बाबा, कि वो सूक्ष्म वतन में है, नया जन्म लिया नहीं है, कि मैंने जो काम करना है यहाँ, अब मुझे ना वीसा बनाने की जरूरत है ना पासपोर्ट। सचमुच ब्रह्मा बाबा ने बॉडी छोड़ी 69 में और 72 में हमारे विदेश के ब्रांच खुल गए, इतने विदेशों में खुल गए, क्योंकि अब वो सोल पावर से काम कर रहा है। अब कितने कहाँ कहाँ जाके टच करता है, कई कहते हैं हमें सुबह सुबह फरिश्ता दिखा, कोई कहता है इसको मैंने देखा था, ऐसी पावर से वो काम कर रहा है। और ये एक विचित्र चीज है कि उसको थोड़े से बच्चे चाहिए केवल फाउंडेशन, क्योंकि पेड़ जब उगता है तो तो पहले तो थोड़ा सा ही होता है, बाकी तो बाद में अपने आप निकलते हैं। आप बिल्डिंग बनाते हैं, पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जितनी मर्जी बना लो। तो शिव बाबा परमात्मा बीज ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जड़ बनाया कि ऐसी धारणा करो, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जो कि मनुष्य सचमुच डिवाइन हो जाए, और कुछ नहीं। रहना हमने मनुष्य है, मनुष्य ना रहे, दैवी गुणों वाले मनुष्य बन जाए। जो गीता में शब्द शब्द लिखा हुआ है वो भगवान कराता है, और हमको इतना इजी लगता है। हम खाम खा मैं करते रहे, मेरा करते रहे, और अपने ऊपर कर्मों का बोझ चढ़ाते रहे। अब भी हम कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हम मेरा नहीं करते तो जैसे हल्का हो जाता। आप मोटर कार को देखो, इंजन स्टार्ट ना हो, मोटर कार को आपको धक्का लगाना हो, आपको 8 आदमी चाहिए, लेकिन इंजन स्टार्ट कर दो तो 2 व्यक्ति धक्का लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होता है। इसी प्रकार से सोल कॉन्शियस होने से आप ये बॉडी का वजन जो है आपको फील ही नहीं होता। ये सारी अनुभव करते करते हमने ये देखा, मैं फाइनेंस का व्यक्ति हूँ, पहले हमारे टेबल पर इतनी सारी फाइलें होती थी, और मेहनत कर करके जब हमने ज्ञान ले लिया, हमारी टेबल पे सिर्फ न्यूज़पेपर होता था। अब क्या हो गया, हम तो वही हैं। तो हमने देखा कि जो उसमें और चीजें थी, ईगो रखना कि मैं ऑफिसर हूँ, नीचे वाला कुछ लिखे मैं उसके ऊपर कुछ बेटर लिखूं तो लोग समझेंगे ये इससे लायक है, वो हमने छोड़ दिया। सिंपल बात है, उसको बुलाया, भाई क्या है, ऐसे करके ले आओ, इजी हो गया। तो सारी दुनिया में जितनी 80% कॉम्प्लिकेशन हैं वो सब वेस्टफुल हैं, यूजलेस हैं, सिर्फ ईगो की वजह से हैं। तो ऐसे करते करते हमारा ईगो घट रहा है, क्योंकि पब्लिक सेवा में लग गए, अपने ऊपर कर्मिक अकाउंट नहीं चढ़ता, पब्लिक सेवा में लग गए, हल्के भी रहते हैं। अब बाबा ने कमेटी बनाई अपने शरीर छोड़ने से पहले, मैं तो नौकरी करता था तो उसमें कई मेंबर थे, तो फिर भी मैं नौकरी से छुट्टी लेकर किसी तरह आ जाता था। तो बाबा कहता था कि इसको नौकरी करता है, इसको छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर भी ये आ जाता है। तो बाबा ने मुझे एक टाइटल दे दिया, उड़न खटोला। अब मैंने कहा ठीक है, अब सचमुच क्या होता है, अब मेरी 84 ईयर की एज है, मैं धरती से रुमाल नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी मैं रशिया घूमे आता हूँ, अमेरिका घूमे आता हूँ, अभी भी मैं अमेरिका जा रहा हूँ 21 तारीख को, तो बाबा चलाता मैं बैठ जाता हूँ, बाबा की याद में पता भी नहीं लगता। तो इसलिए वो उसका वरदान भी जो कह दिया वो हो गया। कहते ना, ब्रह्मा ने जो कहा ब्रह्मा की बात है। दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो ये व्यक्ति ऐसे नहीं करेगा, सचमुच। अब हमारे बड़े भाई साहब थे जगदीश भाई जी, वो बड़े स्कॉलर थे, बुक्स लिखते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा 1956 में कि तुम एक मैगजीन निकालो ब्रह्मा कुमारी का, निकलना चाहिए। तो उन्होंने लिखा और मैगजीन बनाया, फर्स्ट मैगजीन। तो ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे तो मैंने उसको सिर्फ प्रिंट कराया, प्रेस में जाके प्रिंट कराया, बाइंड कराया, ब्रह्मा बाबा के पास लेके गए। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा जगदीश जी भाई को, ये मेरा एडिटर है, और मुझे कहा ये मेरा सेकंड एडिटर है। अब मैं कहाँ का एडिटर, ना तो मुझे लिखना कुछ लिखा, उसको बाइंड करा के रखा था। अब बाबा ने कह दिया एडिटर है, तो मैंने सोचा एक दिन मैं बनूंगा तो जरूर, बाबा ने कह दिया, सोचता रहा कब एडिटर बनूंगा। एक बार जगदीश भाई 15 महीने के लिए विदेश गए, मुझे बोल गए कि भाई ये अखबार 15 महीने निकलना चाहिए, मैं जॉब करता था। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपने स्टैनो पर 2 कॉपियां रखी हुई थी, एक ब्रह्मा कुमारी की एक ऑफिस की। तो उससे मैंने चिट्ठियां लिखवा के जो लेखक थे उनको लिखता था, वो लेख भेजते थे, कर कुर के 15 महीने मैंने वो मैगजीन निकाल दिया। तो फिर मैंने सोचा मैं एडिटर बन गया, पर उसमें मेरा नाम तो एडिटर नहीं था। मैंने कहा बाबा ने कहा, चलो मैं बन गया, अपने दिल को तसल्ली दे ली। फिर जब मैं 72 में दिल्ली आया, बाबा ने कहा कि अब तुम पूरा इसमें लग जाओ। तो वहां भाई लोग बैठे थे एक इंग्लिश मैगजीन निकालना है, कौन निकालेगा? अरे मैंने कभी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा, मैं तो कॉमर्स पढ़ा था। मैंने कह दिया मैं निकालूंगा 81 में। अच्छा, अब मैंने उसको निकाला 81 में, आज तक भी वो निकलता है। बाबा एडिटर था मैं, मुझे ऑडिटर था, एडिटर बना दिया, इंग्लिश भी सिखा दी, सब कर दिया, और अब मेरा नाम लिखा जाता है एडिटर। तो मैंने कहा वो कहा था, ये बना दिया। इसलिए अब ये समझ लो हमारी जिंदगी उसके हवाले है, चाहे शरीर का रोग हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, पता नहीं लगता। वो गाइड कर रहा है, हम चल रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन समय हो गया है। आप ये समझ लो आप ठीक जगह आ गए हो। ब्रह्मा बाबा आपका भी पिता है, और सचमुच आप भाग्यशाली हो, जरूर तभी यहाँ आए हो, नहीं तो सारे लोग आते भी नहीं, कोई आते आते रह जाते हैं। तो आप भी इसका लाभ लेके कि ऐसा समय ब्रह्मा बाबा ये सब कन्वर्शन कर रहा है, खाली हमने थोड़ा सा स्पिरिचुअल यानी आत्मिक दृष्टि रखनी है, रूहानी दृष्टि रखनी है, रूहानी वृत्ति रखनी है, तो बहुत बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू ब्रिज मोहन भाई साहब, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई ब्रह्मा बाबा की। आज आप लोग जैसे आए हो कॉन्फ्रेंस में, 3 दिन हुआ, बहुत कुछ सुना 3 दिन में, अनुभव भी किया। 1937 से ब्रह्मा बाबा थे, 69 में अव्यक्त हुए, लेकिन फिर भी कहानी आज भी हमारे साथ है, और जब तक सतयुग आएगा तब तक बाबा हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। आप उनके बन जाओगे तो जैसे भाई साहब ने बताया कि हम दैवी मनुष्य बन जाएंगे, तो जब हम छोटे थे स्कूल में तो कहते थे भगवान आपका जैसा स्वर्ग है वैसे दुनिया में आ जाए। तो ये स्टोरी जो आपने सुनी उस अनुसार अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं समझती हूँ दुनिया में स्वर्ग जरूर आएगा। हाँ अच्छा, बाकी ब्रिज मोहन भाई की अभी फ्लाइट है, आप जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, और हमारे पास से छुट्टी लेके जा रहे हैं। थैंक यू ब्रिज मोहन भाई। ठीक है, ओके, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी बेस्ट फिलॉसफी जो है इन लाइफ इज टू कीप द माइंड हैप्पी। वी डोंट नो वेदर सक्सेस गिव्स हैप्पीनेस और नॉट, बट अ हैप्पी माइंड कैन ऑलवेज लीड टू सक्सेस। लाइफ शुड बी लिव्ड, इट शुड बी सेलिब्रेटेड। हैप्पीनेस कीप्स यू स्वीट। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो। रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। आपका भी रिश्ता अभी यहाँ जुट गया है, आप उसका अंत नहीं करना। आगे हमारे मोहन भाई साहब आपको पिताश्री ब्रह्मा बाबा की और बातें बताएंगे। जी, तो वो अपना भी विचार इस पर प्रस्तुत करेंगे। बाकी मोहन भाई को तो आप सब जानते हो, उनका परिचय पहले भी मिल चुका है, इसलिए हमारे बहुत वरिष्ठ भाई हैं। इतनी सारी सेवाएं करते कि उनका गुणगान गाते गाते भी समय चला जाए। तो स्ट्रेट वे हम निवेदन करते कि वो अपना विचार पिताश्री ब्रह्मा बाबा की कहानी पर करें। ओम शांति।
ओम शांति। अभी आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहे थे आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी के द्वारा कि किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में उनके जीवन में परिवर्तन आया, ये उनका ही इतिहास नहीं है बल्कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक एक भाई बहन की कहानी है कि किस प्रकार से जब ब्रह्मा बाबा थे उनके संपर्क में आके उनका जीवन बदला, और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद से हमारी वरिष्ठतम दादियां, दीदियां, वरिष्ठ भाई, उनके संबंध संपर्क में आने से और सभी का भी जीवन बदला। मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि ब्रह्मा बाबा के साथ में रहने का। यह तो एक लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो भी समय बचा है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मैं संक्षिप्त इतिहास इस स्लाइड के माध्यम से आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। जरा ये स्पीड फास्ट होगी क्योंकि इसके बाद भी सेशन है, आप सब लोग गौर से ध्यान से इस दिव्य कहानी को सुनिएगा कि इस दिव्य कहानी जिसका कि नायक स्वयं परमपिता परमात्मा है, ये दिव्य कहानी के द्वारा किस प्रकार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कैसे यह एक नन्ना सा पौधा जो एक 1936 में रोपा गया आज विशाल वट वृक्ष बन करके सारे विश्व को एक शीतल छाया प्रदान कर रहा है। ये एक दिव्य कहानी यज्ञ इतिहास पिता श्री ब्रह्मा बाबा के एक अद्भुत जीवन कहानी है जिनका की चित्र आप सम्मुख स्टेज पर देख रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है वास्तव में 1936 से और आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जैसे बताया गया लगभग 140 केंद्र हैं विश्व के पांचों कॉन्टिनेंट्स में। ये बाबा का संक्षिप्त इतिहास है जो आप फोटो देख रहे हैं। एक हीरे जवाहरात के प्रसिद्ध व्यापारी थे, नाम था दादा लेखराज, लेकिन सब उन्हें आदर से लखीराज बाबू के नाम से जाना करते थे। बाबा का परिवार भी बहुत भरा पूरा था, उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियां थीं जो एक संक्षिप्त में यहाँ बताया गया है। बाबा की प्रवृत्ति बहुत ही, इतने धन धान्य संपूर्ण होते हुए भी बाबा बहुत ही दानी प्रकृति के थे, और समाज के अंदर कोई गरीब होता था उसके उनकी बच्चियों का विवाह करना, कोई मुश्किल में होता था दान पुण्य करना, उनके घर के आगे हमेशा दान लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। अनाज का, वस्त्र का, सब चीजों का दान बाबा किया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ ही बाबा को एक खोज थी कि सत्य की खोज, भगवान कौन है, क्या करता है, वास्तविकता क्या है, उस खोज में बाबा सदा तल्लीन रहा करते थे। और ऐसे ही जब स्थिति में बाबा को एक बार विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, बाबा बनारस में ध्यानमग्न बैठे थे, अपने एक मित्र के यहाँ गए थे और बाबा को बस एकदम साक्षात्कार में बाबा ने देखा विष्णु चतुर्भुज की, एक के एक बाद एक चार रूप देखे जो हम कहते हैं विष्णु चतुर्भुज का रूप है, और अलग अलग धर्म के स्थान के आधार पर जो विष्णु चतुर्भुज के रूप देखे, लेकिन एक बात कॉमन थी, क्या? विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आते थे और आकर के क्या कहते थे, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरा ही स्वरूप हो। बाबा के कानों में जब ये आवाज पड़ती थी बाबा को समझ में नहीं आया ये क्या आवाज है, और साथ ही साथ फिर बाबा ने एक और साक्षात्कार किया। क्या साक्षात्कार किया? इस विश्व के परिवर्तन का। बाबा ने देखा ये दुनिया का महाविनाश जैसे हो रहा है। किस रीति से? मुख्य तीन साधनों से। पहला बाबा ने देखा एटॉमिक वार हो रही है, और जो वर्ल्ड के यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज आदि हैं, उन वो इन्वॉल्व हैं इसमें, और एटॉमिक वेपन्स के द्वारा अणु युद्ध हो रहा है। दूसरा बाबा ने देखा भारत के अंदर विशेष और विश्व के अंदर इन जनरल बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं अर्थक्वेक के द्वारा हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सुनामी है, कहीं सूखा है, कहीं क्लाउड बर्स्ट बादल का फटना है, आदि आदि, और बहुत भयंकर विनाश हो रहा है। और तीसरा बाबा ने देखा सिविल वार, अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग लड़ रहे हैं, और विशेष करके भारत के अंदर ये सिविल वार बहुत हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, खूनी नाहक खेल। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, और उन बुजुर्गों ने अगर 1947 में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम के अंत में पार्टीशन हुआ, खूनी नाहक खेल देखा होगा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, तो बाबा बताते हैं बच्चे वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक बहुत छोटी सी रिहर्सल थी, और ऐसा अब खूनी नाहक खेल होने वाला है। और बाबा ने जब ये देखा दृश्य, तो एकदम बाबा की आंखों से जैसे आंसू निकलने लगे, और बस हे प्रभु ये क्या हो रहा है, हे प्रभु अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए। और गीता प्रसिद्ध जो अर्जुन की भांति बस बाबा ध्यान मग्न हो गए। और इस स्थिति में बाबा ने देखा एक परम धाम, आत्माओं की दुनिया, बहुत छोटे छोटे सितारे हैं, जैसे हम लोग रात को तारे देखते हैं, ऐसे आकाश में जैसे बाबा ने देखा सितारे हैं, और वो आत्माओं की दुनिया है। लेकिन उनमें ब्यूटी क्या थी कि वो सितारे जो है एक एक करके जमीन पर आते थे, और जमीन पर आते ही कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाते थे। बाबा तो इस दृश्य को समझ नहीं सके, लेकिन बाद में ईश्वरीय ज्ञान से बाबा को स्पष्ट हुआ वो जो सितारे बाबा देख रहे थे वो है आत्माओं की दुनिया, आत्माएं जहाँ रहती हैं जिसे परम धाम बोलते हैं, और वहां से वो सितारे नीचे आते हैं पृथ्वी पर, और कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी, और नीचे बहुत अच्छा दृश्य पैदा हो गया, वो रास कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरातों की दुनिया है, चारों तरफ एकदम जैसे स्वर्ग का दृश्य है, वैसा दृश्य तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो पीछे मेला हो रहा है, यहाँ पर उसे बनाने का एक थोड़ा सा स्वरूप दिखाया गया है, आप लोगों ने ये मेला देखा होगा, न देखा हो तो अवश्य देखिएगा, इसमें वो स्वर्ग का दृश्य दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया गया है। और ये देख करके बस बाबा का दिल तो बहुत हर्षित हो गया, खुश हो गया। बाबा देख ही रहे थे कि ऐसे में बाबा को एक वो आवाज सुनाई पड़ी। क्या आवाज सुनाई पड़ी? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा ध्यान मग्न देख रहे हैं स्वर्ग का दृश्य, राजकुमार राजकुमारी खेल कूद कर रहे हैं, आनंद मग्न है, और बाबा के कानों में आवाज आई एक भविष्यवाणी जैसे हुई, तुम्हें इस दुनिया का निर्माण करना है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बस बाबा तो सोच में पड़ गए, ये कौन था, किसकी आवाज थी, मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा, मुझे तो मालूम ही नहीं। साधारण पुरुष जैसे बाबा, लेकिन भगवान का ईश्वर का निर्देश था कि तुम्हें ऐसी दुनिया का निर्माण करना है। और जब बाबा को ये आवाज सुनाई पड़ी, बाबा का जीवन बदल गया। बाबा जो हीरे जवाहरात के इतने बड़े व्यापारी थे, राजा महाराजाओं के यहाँ उस समय उनसे परिचय था, कहीं कभी राजा नेपाल के यहाँ, उदयपुर के यहाँ, अलग अलग राजाओं महाराजाओं के यहाँ जाके बाबा वहां पर, बाबा को पूरी छुट्टी थी, इतना बाबा का जो महान चरित्र था, राजाओं ने छुट्टी दी थी, आप रनिवास में जाके रानियों को उनके हीरे जवाहरात का नाप लो और उन्हें जो भी आपको बनवाए वो आप बना के दो। लेकिन बाबा को उसके बाद ये दृश्य देखने के बाद बाबा को हीरे जवाहरात जैसे पत्थर जैसे लगने लगे। बाबा को लगा इनसे क्या होगा, अब तो मुझे सच्चे हीरे जवाहरात मनुष्य आत्माएं जो है उनका जैसे उनके जीवन को बदलना है। और बाबा को फिर जीवन परिवर्तन होने लगा। ऐसे में ही एक बार बाबा चूंकि बहुत अध्यात्म पुरुष थे, बाबा के यहाँ एक सभा हो रही थी, बाबा को पहले ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ, और शिव का साक्षात्कार लाइट का साक्षात्कार, बाबा बस देखते ही रह गए। और एक बार ऐसे ही गुरु के यहाँ, उनके यहाँ गुरु को उन्होंने बुलाया हुआ था, गुरु सत्संग कर रहा था, गीता पाठ सुना रहा था, सब बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। एकाएक ही बाबा को क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा को, वो उठे और उठ करके अपने कमरे की ओर चल दिए। इस बात को उनकी पत्नी, उनकी बहू, बेटे की बहू वो देख रही थी, तो उन्हें आश्चर्य लगा, क्योंकि बाबा कभी भी गुरु की सभा से उठा नहीं करते थे। गुरु जब तक प्रवचन करता था तन्मय होकर सुनते थे, लेकिन आज बाबा उठ करके कमरे में गए तो देखने के लिए क्या बाबा की तबीयत ठीक है या क्यों बाबा उठे। उनके पीछे पीछे उनकी बहू, उनका नाम था ब्रिजेंद्रा दादी। हम लोग सब दादा और दादी शब्द जो यूज करते हैं, दादा माने एल्डर ब्रदर, दादी माने एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। तो ब्रिजेंद्रा दादी भी उठी और वो कमरे में गई, और कमरे में जाकर उन्होंने क्या दृश्य देखा, एक अद्भुत दृश्य। बाबा चारपाई पर बैठे हुए हैं वहां पर अपने कमरे में जाके, और ध्यान मग्न है, और चारों तरफ जैसे एकदम एकाएक लाल प्रकाश हुआ और पूरा कमरा जैसे लाल 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 हुआ, और निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन में प्रवेश किया। वो तो निराकार है परमात्मा, और जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। और परमात्मा आते हैं परमानेंट तो प्रवेश नहीं करते, जब आवश्यकता होती है ईश्वर की प्रवेशता होती है, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के मुख से जैसे ये शब्द सुनाई पड़े, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, और जस्ट बाबा के नेत्र बंद हो गए। परमात्मा शिव की ये पहली प्रवेशता थी। यह है सन 1936 की बात। परमात्मा तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान सुनाएगा। तो ब्रह्मा बाबा का तन ईश्वर ने चुना और उनके द्वारा ये महावाक्य उच्चार करके अपना परिचय दिया कि मेरा नाम शिव है, मैं निजानंद स्वरूपम, मैं बिंदी स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। ये महावाक्य उच्चार करके परमात्मा ने सबसे पहले पहले अपना परिचय दिया। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ी विचित्रता लोगों ने देखी। ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सत्संग किया करते थे अपने घर में, तो लोग आते थे, माताएं कन्याएं विशेष आती थी, भाई भी आते थे, लेकिन संख्या ज्यादातर माताओं बहनों की होती थी। तो क्या देखते थे सब लोग, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख आए, बस ब्रह्मा बाबा और वो योग लगा रहे हैं, और देखते देखते ब्रह्मा बाबा जैसे गुम हो जाते थे, उनकी जगह श्री कृष्ण दिखता था, कईयों को उनकी जगह श्री नारायण दिखाई देते थे। और इस प्रकार से कभी ब्रह्मा बाबा, कभी श्री कृष्ण, कभी श्री नारायण, और स्वर्ग का दृश्य, ये सब देखते देखते बस तन्मय हो जाते थे, सब तनलीन हो जाते थे, रास करने लगते थे, खेलने कूदने श्री कृष्ण को देख करके। कौन भला वो अचंभे में नहीं आएगा, किसका दिल नहीं होगा मैं इतने सुंदर बच्चे को गोदी में उठाऊं खिलाऊं, इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में तो शरीर रूप से ब्रह्मा बाबा थे, लेकिन ध्यान में जाके माताएं उन ब्रह्मा बाबा को कृष्ण के रूप में देखा करते थे। और इस प्रकार से ये जब शुरू हुआ ये सत्संग, और ये सत्संग में शुरू में नाम बाबा ज्ञान की ध्वनि करते थे, ओम की ध्वनि, और इसलिए इसका नाम पड़ा ओम मंडली। और जब ये ओम मंडली का विस्तार होता गया, चारों तरफ चर्चा हो गई कि जो भी दादा लखीराज के यहाँ जाता है वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, और वहां पर आने वालों में बहुत कन्याएं माताएं थी, लेकिन एक कन्या बहुत बुद्धि की कुशाग्र थी, उनका नाम था ओम राधे, और वो संगीत की भी बहुत प्रेमी थी, संगीत अच्छे गीत गाती थी, गीत बनाती थी। और ये जो दिखाया गया है चित्र में, ये ममा सितार बजाने में बहुत प्रवीण थी, और वो भजन बना के सुनाया करते थे, इसीलिए उनका नाम ओम राधे पड़ा। वो जैसे कि मॉनिटर, पूरे सब कन्याएं बहनें थी, और उनके साथ ही साथ एक और युवा कन्या आई, उनका नाम था प्रकाश मणि, जो बाद में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बनी, और इस प्रकार से ये संस्था शुरू हुई। तो बहुत माताएं आई थी, बहुत छोटे बच्चों को लेकर भी आई थी, सबको ध्यान में साक्षात्कार होते थे। तो नियम बनाया गया कि परिवार से वो चिट्ठी लेकर के आएंगी कि हम ओम राधे के पास सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, और वो आते थे तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत होते थे, माताएं कन्याएं विशेष होती थीं। तो बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल पहले खोला, ये बोर्डिंग स्कूल में आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटी कन्याएं माताएं बच्चे आदि हैं, और इस प्रकार से ये बाबा का अलौकिक परिवार शुरू हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कन्याओं के साथ जो आज इस विशाल यज्ञ को संभाले हुए हैं। और ये देखिए किस उम्र के, उम्र सब 12 15 18 साल के ये सब माताएं कन्याएं हैं, और ये वहां पर भी कराची की बात है ये, और कराची में क्लिफ्टन जगह है समुद्र के किनारे, वहां पर जाया करते थे, बाबा ले जाते थे। दुनिया तो घूमने के लिए जाती है, लेकिन वहां उस शांत वातावरण में ये योग तपस्या ध्यान में इतने सब बहन भाई बैठ जाते थे और योग और ध्यान का अभ्यास करते थे, और साथ ही बाबा इन बच्चों को फिजिकल ड्रिल की भी शिक्षा देते थे, क्योंकि आवश्यक ही है स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। और इस प्रकार से ये बाबा और मामा के द्वारा संचालित यज्ञ ये शुरू हुआ। तो ये 1936 में जो शुरू हुआ और कराची में लगभग 14 साल तक ये यज्ञ रहा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, तो पहले जो ये सारी स्थापना का कार्य हुआ हैदराबाद सिंध कराची, जो आप जानते हैं वर्तमान समय तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय 36 में तो अनडिवाइडेड इंडिया था, अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान बना, तो 47 से लेकर 50 तक लगभग 3 साल ये लोग पाकिस्तान में ही रहे। वहां पर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया गया, वो सब समझते थे ये तो खुदा के बंदे हैं, और इस प्रकार से इनकी हर प्रकार से वहां पर मदद किया करते थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप भारत क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय आदेश था, परमपिता परमात्मा का आदेश कि अब इस यज्ञ को भारत में शिफ्ट करना है। तो इसलिए जब भारत जाने की तैयारी हो गई, बहुत उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन परमात्मा का आदेश था यहाँ आना था। इस प्रकार से ये यज्ञ शिफ्ट हुआ और सबने भारत आने की तैयारी की। उस समय ये लोग सब मिला करके 350 से अधिक लोग थे, 350 एंड मोर। इतने बड़ों को यज्ञ को इतने सामान के साथ शिफ्ट करना आप समझते हैं साधारण कार्य नहीं है। और ये आप शिफ्टिंग का देख रहे हैं, ये एक जो शिप है उस शिप के अंदर इन सब 350 लोगों का सामान सब चीजों के साथ इन्होंने वहां से प्रस्थान किया कराची से, और भारत के ओखा बंदरगाह पर जो सौराष्ट्र में है जामनगर के पास ओखा बंदरगाह, वहां पर ये शिप आया। ये एक शिप के बीच की तस्वीर है, सब बैठे हुए हैं और वहां से शिफ्टिंग होके आए, और ओखा बंदरगाह पे जब आ गए वहां उतर के इन्होंने ट्रेन एक बुक किया हुआ था, ट्रेन में वहां से लेकर आबू रोड तक आए। ये आबू रोड ये भी ईश्वरीय निर्देश के अनुसार हुआ। इससे पहले बाबा ने एक डेलीगेशन भेजा था भारत में भी जाकर कहां स्थापना की जाएगी, तो वो डेलीगेशन ने बहुत जगह भ्रमण किया, अहमदाबाद भी, बम्बई भी, कलकत्ता भी, सब जगह, लेकिन उन्होंने जगह पसंद की आबू रोड, माउंट आबू। क्यों? क्योंकि यहां पर ही पुरानी स्मृतियां हैं, नक्की लेक है, यहां पर ही दिलवाड़ा मंदिर है, यहीं कुमारी देवी का मंदिर है, अदर कुमारी जो इतिहास में गायन है संस्कृति में भारतीय संस्कृति का। और बाबा ने भी कहा आप सबको पहाड़ों के ऊपर जाकर तपस्या करनी है, तो माउंट आबू एक ऐसा विर्जिन पहाड़ था। तो यहाँ पर ये पूरा यज्ञ शिफ्ट हुआ और आबू रोड पर उतरे, आबू रोड स्टेशन पर आके फिर फिर उन्होंने यहाँ पर अलग अलग वो मकान लिया और पूरा संगठन ये माउंट आबू में शिफ्ट हुआ। यहाँ पर ब्रिज कोठी थी पहले और वर्तमान समय जो है वो पोखरान हाउस लास्ट इनका था, और उसके बाद तो पांडव भवन में अभी हमारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है और वहां पर सब लोग हैं। ये बाबा ममा के साथ सब ये यज्ञ के पालनहार सबको इनके साथ ऐसा ही लगता था हम अपने माता पिता के साथ जैसे पल रहे हैं। बाबा भी इन बच्चों को ले जाया करते थे पहाड़ियों के बीच में और बताया करते थे देखो बच्चे तुम लोगों का ही गायन है, जो दिलवाड़ा मंदिर को देख करके ये बच्चे यादगार है, आप लोगों ने भी जो तपस्या की है उस तपस्या का जैसे ये यादगार स्थल बनाया गया है। और इस प्रकार से एक एक बच्चे की बाबा ने कितनी पालना की। उन्हीं में एक थी दादी मनोहर इंदिरा जी जिनके साथ बाबा का ये फोटो है, और अलग अलग इस प्रकार से ये मामा बाबा ये बीच में दादी प्रकाशमणि जी खड़े हुए हैं और जो कि बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। और उस समय सब जगह यही मम्मा जाया करते थे, ज्ञान सुनाया करते थे अलग अलग। ये लखनऊ में मम्मा का स्वागत का ये तस्वीर है। कानपुर में तो पहले नॉर्थ इंडिया में पंजाब में सेवा केंद्र खुले, साउथ इंडिया में खुले, सबसे पहला केंद्र तो दिल्ली में खुला कमला नगर में, और सबसे पुराना केंद्र हमारा वो ही है। और फिर इस प्रकार से जो मम्मा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक तरह से कहें फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, उनके सानिध्य में बच्चों का आध्यात्मिक विकास होता गया। ये दादी प्रकाशमणि जी मम्मा के साथ जैसे कि योग तपस्या में बैठे हुए हैं, और मम्मा को देखते देखते ही ना लोग भी ध्यान में चले जाते थे। और ये मम्मा ने जो यज्ञ 1965 तक यहाँ पर यहाँ 1950 में यज्ञ यहाँ आया माउंट आबू में, और 65 में 1965 में मामा ने देह का त्याग किया। ये देख रहे हैं कैसे ये स्थूल देह का त्याग करते हुए मामा अशरीरी हो गए, विदेही हो गए। और ये विदेह अवस्था का मामा को कईयों को साक्षात्कार होता था। और इस प्रकार से मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने 24 जून 1965 को अपनी देह का त्याग किया। उसके बाद बाबा ने ममा ने जब शरीर छोड़ दिया और इतनी सारी कन्याएं बहनों माताओं की संस्था थी, तो बाबा ने दीदी मनमोहनी जी, आप में से कईयों ने मनमोहनी जो यहाँ पर रहने का स्थान है मनमोहनी पार्क वहाँ पर देखा होगा, दीदी मनमोहनी जी की स्मृति में ही वो बना हुआ है। तो दीदी मनमोहनी जी वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत बहुत सीनियर दीदी थी। वो दीदी और दादी प्रकाशमणि इन दोनों के हाथ में वो मतलब पहले दीदी मनमोहनी को रखा, उसके बाद बाबा भी सर 1969 में अव्यक्त हुए। और उससे पहले ही पार्टियां बहुत आने लगी थीं और सब पार्टियों के साथ अलग अलग यहाँ पर ये फोटो आप देख रहे हैं। बाबा कितने स्नेह से प्यार से पालते थे बच्चों को, टोली टोली यानी कि प्रसाद आदि खिलाया करते थे, ये सब आप देख रहे हैं। और किस प्रकार से बाबा का साक्षात्कार होता था सबको, ब्रह्मा बाबा उस समय ये तो इंटरनेट ईमेल आदि तो होता नहीं था, 60s की बात है, लेट 60s की, तो बाबा अपने हाथों से गोल्डन लेटर से पत्र लिखा करते थे एक एक बच्चे को मार्ग प्रदर्शना। तो आप लोगों ने जो माउंट आबू देखा होगा या ना देखा हो, कल आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर हमारे चार धाम बने हुए हैं, और वहीं पर एक झोपड़ी जहाँ बाबा योग तपस्या भी किया करते थे वहाँ बैठ के बच्चों को पत्र लिखते थे। तो ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते हुए ये आपको दिखाया गया है, ये पत्र का एक सैंपल है टिपिकल, क्योंकि बाबा सिंधी में पत्र लिखते थे तो दो लाइनों के बीच में वो रेड बाबा के रेड इंक में लेटर वो पत्र होते थे। अब सिंधी तो हर एक कोई जनरल समझता नहीं, तो उसके बीच में हिंदी का ट्रांसलेशन यहाँ पर ईशु दादी उनकी जो पीए थी, अभी भी ईशु दादी जी हैं यहाँ विश्व कल्याणी भवन में रहती हैं, और शुरू से ही बाबा की ये पीए की तरह रही हैं वो। और हमारे जो अकाउंट्स है, उसकी हेड है और अभी ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, यहाँ विश्व कल्याणी भवन एक है वहां पर रहती हैं। तो वो पत्र का हिंदी में ट्रांसलेशन करके भेजा करते थे और वो आप देख रहे हैं कि लाल अक्षरों में कैसे बाबा का लिखा हुआ है, सिंधी उर्दू भाषा जैसी होती है उसमें लिखा हुआ और बीच में हिंदी में वो पत्र का ट्रांसलेशन। ये वहां पर ब्रह्मा बाबा की झोपड़ी है, चार धाम जो मैं बता रहा था आपको, ये जो अभी तो फिर भी उसका रूप बदल गया, पहले तो बहुत कच्ची थी, ये हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में जहां पर बाबा क्लास कराया करते थे, और ये हिस्ट्री हॉल का ही एक अंदर का दृश्य है। और एक बाबा का कमरा है जहां बाबा रहते थे, उस समय तो बहुत ही छोटा था, लगभग 8x10 का कमरा था, अब तो बड़ा थोड़ा कर दिया है क्योंकि बहुत लोग आके वहां ध्यान करते हैं, लेकिन वहां इतने स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, इतने स्ट्रांग वाइब्रेशन है, वहां जाते ही मन की स्थिति तुरंत ही बहुत हाई स्पिरिचुअल स्टेज में पहुंच जाती है। वो तो आप भी वहां जाएंगे और मन के अंदर अगर कोई भी व्यथा हो, कोई भी बात हो, वहां पर ही बॉक्स भी रखा है, उसके अंदर लिख करके भी डाल सकते हैं, भले अपना नाम पता लिखें ना लिखें, बाबा को बस फेस टू फेस 1x1 की तरह अपने मन की व्यथा सुना दें और वो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है मन में उसका सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाता है। हम लोगों के 50 वर्ष के जीवन का ये अनुभव है और ऐसा वो बाबा का कमरा है, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस हैं। और बाबा ने भी 18 जनवरी 1969 में अपनी देह का त्याग किया, और तब बाबा भी जो भाई साहब बता रहे थे, और वो क्योंकि शरीर पुराना होता है, उस समय बाबा की आयु 93 ईयर थी, तो शरीर के प्रति भी समय देना होता है, लेकिन बाबा ने जब देह त्याग किया फिर तो वो आत्मा देह से स्वतंत्र हो गई और अभी विदेही रूप में पूरे विश्व की सेवा कर रही है। तो ये अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और उनकी स्मृति में एक शांति स्तंभ बनाया गया है, आप ऊपर जाएंगे पांडव भवन में वो शांति स्तंभ को देखेंगे, जैसे यहाँ सामने प्रकाश स्तंभ है दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में, ऐसा ही वहां पर वो शांति स्तंभ एक बनाया गया है। और वो अभी भी सबको ये महसूस होता है, शरीर रूप से चाहे ब्रह्मा बाबा नहीं है लेकिन अभी भी अव्यक्त रीति से ब्रह्मा बाबा हम सब लोगों के साथ हैं। ये देखिए इस शांति स्तंभ का एक दृश्य है, और 18 जनवरी के समय कैसे देश भर ही नहीं बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं और इस प्रकार से वहां पर इकट्ठे होकर ध्यान तपस्या करते हैं। ये चारों जो धाम है, चारों का फोटो है, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ और साथ ही साथ मेडिटेशन हॉल, तो ये उसके अंदर बताया गया है। दादी प्रकाशमणि जी की ये फोटो है, 1969 में बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि दादी जी बनी, लेकिन उनके जीवन काल में 69 से लेकर 2007 तक वो रहे, तो उनके समय में इस यज्ञ का बहुत बहुत बड़ा विस्तार हुआ, वो आपको इसमें पूरा देश विदेश में विश्व के कोने कोने में इस इंस्टीट्यूशन की ब्रांच खुली और जो जिसका स्वरूप आज इतना विशाल देख रहे हैं। ये दोनों का है, जो लेफ्ट साइड में है वो दादी प्रकाशमणि, जो राइट साइड में है वो दीदी मनमोहनी जी, और ये दोनों कहने के लिए हम सब कहा करते हैं दो तन है लेकिन एक प्राण है, इतना दोनों में स्नेह था, दोनों ने प्यार से मिल करके इस संस्था को विश्व की सर्वोत्तम वुमेन लेड इंस्टीट्यूशन बना दिया। ये दीदी और दादी का यहाँ फोटो है, और दीदी दादी अकेले ही नहीं थे, दीदी दादी के साथ ये उन लोगों के 8 दादियों के चित्र हैं जो माला में भी गायन है, अष्टरतन 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं जिसमें बीच में एक परम पिता परमात्मा और चारों तरफ एक एक रतन जो होता है अष्टरतन, तो ये 8 दादियां इनके अंदर यहाँ पर वो बताया गया है, अलग अलग यहाँ पर भी कुछ रहते थे, कुछ अलग अलग स्थानों में ये दादियां रहते हैं। और इस प्रकार से फिर पहला फर्स्ट ग्रुप आना शुरू हुआ, प्रथम ग्रुप जो आया है वो प्रथम ग्रुप ये देखिए विदेश में 1974 में पहला डेलीगेशन यहाँ से गया विश्व में और वहां से वो आता गया अलग अलग विदेशी ग्रुप ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैं आपको ये ओम शांति भवन है जो वहां चल के आप देखेंगे अभी ऊपर और पहला पहला एक सर्वधर्म सम्मेलन विश्व का वो ओम शांति भवन में आयोजित किया गया। वो इसके बाद जब वो छोटा पड़ने लगा तो वहीं से 4 किलोमीटर दूर एक ज्ञान सरोवर स्थापन किया गया जो जमीन ली गई वो हमारी इंस्टीट्यूशन की एकेडमी है एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड वो भी आप जब ऊपर जाएंगे उसे देखेंगे। साथ ही एक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल। और ये तो यहाँ पर आप बैठे ही हैं डायमंड हॉल में शांति वन में कितना भव्य पिलरलेस हॉल है ये डायमंड हॉल। और यहीं पर ही जैसा आपको पहले दिन बताया गया था परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है और विश्व भर के कोने कोने से भाई बहने आते हैं और ज्ञान सुनते हैं।
कलयुग का अंत अब आया
कभी ईश्वरीय स्मृति में
विकराल विनाश खड़ा आगे
शांति। और इस रीति से अब दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में शरीर छोड़ा उसके बाद से दादी जानकी जी ने कार्यभार संभाला और वर्तमान समय वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं। कल आप सबने देखा अभी 103 वर्ष की आयु में भी कितने वो एक्टिव हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। ये कुमारियाँ ब्रह्मा कुमारी की तैयारी के लिए ये कुमारियाँ की ट्रेनिंग आदि ये जन जागृति की विशाल सभाएं ये विशेष आत्मा दादी हृदय मोनी जी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इनके ही तन के द्वारा अब ब्रह्मा बाबा का तन तो है नहीं तो इनके तन के द्वारा परमपिता परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान की पालना इनके द्वारा देते हैं। दादी गुलजार जी वर्तमान समय अभी ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बम्बई गए हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा या बाप दादा माने परमपिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा उनको जैसे हम बाप दादा कहते हैं तो उनके तन में प्रवेश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से आपने सुना ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू मोहन भाई कितनी अच्छी प्यार भरी बाबा की स्टोरी सुनाई। आप सब भी चाहोगे कि इनके भी आप हिस्सा एक बन जाओ स्टोरी के। तो मैंने जैसे कहा कि बाबा थे हैं और हमारे साथ अंत तक रहेंगे। तो आप सभी यहाँ पर बाबा के पास हर रोज आना, जो भी सेवा केंद्र नजदीक पड़े वहाँ पर जरूर जाइएगा, और सच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन जरूर बनिएगा। इंडियन ये जो बहुत अच्छी बातें हैं, जॉयफुल लाइफ, वी कैन से कि वी आर ऑल टूरिस्ट एंड गॉड इज अवर ट्रेवल एजेंट हु हैज ऑलरेडी फिक्स्ड अवर रूट्स रिजर्वेशंस एंड डेस्टिनेशंस, सो ट्रस्ट हिम एंड एंजॉय द ट्रिप कॉल लाइफ। साथ में अंत में दो शब्द में मैं पूरा करती हूँ। May the lamps of happiness and prosperity brighten up your life. And on behalf of Brahma Kumaris Vidyalay, we wish you peaceful, positive, productive and powerful life. And may Shri Baba and Brahma Baba give you strength to walk on the path they have paved to bring heaven on earth. So you also join this mission, spiritual mission, and then we can have heaven on earth.